अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो इप्सिता का हाथ पकड़कर सीधे कमरे से बाहर निकला और राज्याभिषेक के लिए सीधे महल के बाहर आया और उसने देखा वहाँ मासा, मुनीम जी और घर के बाकी लोग पहले से ही मौजूद थे। सामने की तरफ मीडिया रिपोर्टर्स भरे पड़े थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अभिमन्यु ने उन सबको देखकर एक गहरी सांस ली और इप्सिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो दोनों सीधे उन मीडिया रिपोर्टर्स के सामने जाकर खड़े हो गए जहां पर कई सारे माइक लगे हुए थे। तभी इप्सिता की नज़र वहीं खड़े उदय और नंदिनी पर गई। इप्सिता उन्हें देखकर मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों के पीछे अपने मम्मी पापा को देखा तो इप्सिता का चेहरा उतर गया और वो उन दोनों की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, ये मम्मी पापा यहाँ पर भाई और नंदिनी के साथ क्या कर रहे हैं? हमने तो नंदिनी से बात भी नहीं की। क्या मम्मी पापा से भाई की बात हो गई है? सब कुछ ठीक हो गया क्या उनके बीच? चलो अच्छी बात है। इप्सिता यही बात सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा नंदिनी के हाथ में उसके घर के खानदानी कंगन थे। उसने इस टाइम वाइन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। आज उसके चेहरे की चमक ही एकदम अलग थी। इप्सिता ने भी वो नोटिस कर लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। इप्सिता नंदिनी से कुछ बात कर पाती उससे पहले ही अभिमन्यु का राज्याभिषेक शुरू हो गया और अर्पिता भी वहां पर आई। उसके पीछे एक नौकर चल रहा था जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी और दूसरी तरफ के नौकर के हाथ में एक बड़ी सी थाल थी जिस पर कुछ कपड़े से ढककर रखा हुआ था। इप्सिता के सामने आकर खड़े होते हुए अर्पिता ने कहा, भाभी ये तलवार आपको भाई के हाथ में देनी है और उनके बाद ये पगड़ी भी आपको पहनानी है। अर्पिता की बात सुनकर इप्सिता ने उसके दोनों साइड पर ध्यान से देखा और फिर बोली, लेकिन अभिमन्यु ने तो पहले ही पगड़ी पहनी हुई है, तो फिर ये दूसरी पगड़ी क्यों? इप्सिता के सवाल पर अर्पिता ने उसे समझाते हुए कहा, भाभी ये पगड़ी हमारे बाबा सा की है और होने वाले राजा को उसके राज्याभिषेक वाले दिन ये पगड़ी पहनाई जाती है। उसके बाद से ही वो राजा बनता है। ये यहाँ की परंपरा है और ये तलवार आप भाई के हाथ में देंगी, इस बात का प्रतीक होगा कि आप हमेशा ही उनकी ताकत बनकर उनके साथ रहेंगी। ये रस्म पटिया ही करती है, इसीलिए राज्याभिषेक के वक्त राजा का शादीशुदा होना जरूरी होता है। अर्पिता की बात सुनकर इप्सिता ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ रहना और जैसे जैसे जो करना है प्लीज हमें बताती रहना, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अर्पिता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाभी हम यहाँ पर ही हैं आपके साथ और आप घबराइए मत, हमें आपका पूरा विश्वास है, आप सब कुछ ठीक करेंगी। अभिमन्यु वहां पर आया और उन सारे लोगों के सामने आकर एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और उसने हाथ हिलाकर उन सारे लोगों का अभिवादन किया और सब उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे, क्योंकि अभिमन्यु के राजा बनने से शहर के ज्यादातर लोग खुश थे, क्योंकि सबको पता था वही काबिल राजा है जो राजमहल और राजा की सारी जिम्मेदारियां संभाल सकता है। उसके वहां पर खड़े होने के बाद ही उसकी मासा मुनीम जी के साथ आगे आई और अभिमन्यु के सामने आकर खड़े होते हुए उन्होंने मुनीम जी की तरफ इशारा किया और मुनीम जी ने अपने हाथ में पड़ा हुआ कागज अभिमन्यु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये शपथ पत्र है, आपको सबके सामने ये सारी बातें बोलनी है और वचन लेना है कि आप राजा बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और आपके लिए सबसे ऊपर ये राजा का पद आएगा, उसके बाद सारे रिश्ते और कोई लोग। मुनीम जी की बात पर अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उनके हाथ से वो कागज ले लिया और तभी एक नौकरानी हाथ में थल लेकर वहां पर आई और उसमें से चंदन लेकर अभिमन्यु की मां ने उसका राजतिलक किया और उसके सामने खड़े होते हुए कहा, अभिमन्यु आज तक कभी आपने हमें निराश नहीं किया, उम्मीद है आगे भी आप हमारी सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अपनी माँ की बात का जवाब दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे मासा। वहां पर बीचों बीच में रखे हुए उस बड़े से राज सिंहासन जैसी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए मासा ने कहा, ठीक है अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आज से ये जगह आपकी है। अपनी माँ की बात सुनकर अभिमन्यु उस तरफ बढ़ा और एकदम राजा की तरह दोनों किनारों पर हाथ रखकर उस राज सिंहासन पर विराजमान हो गया और उसके बाद मासा ने अर्पिता की तरफ इशारा किया तो अर्पिता ने इप्सिता से आगे जाने के लिए कहा। इप्सिता आगे आई और उसके पीछे वो नौकर भी आया। इप्सिता ने उस नौकर के हाथ से तलवार लेकर अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा दी और बोली, हमें इन रस्म रिवाजों और परंपराओं के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अगर बात हमारी और आपकी है तो हम हमेशा आपकी ताकत बनना चाहेंगे और हर सिचुएशन में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए हम आपका हमेशा साथ देंगे, अभिमन्यु। इप्सिता की ये बात सुनते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आप हमेशा से ही मेरी ताकत बनती आई हैं और आप अब मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमें पता है आप हमेशा हमारा साथ देंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इप्सिता ने दूसरी साइड पर खड़े नौकर के हाथ में पड़ी हुई थल से उठाकर वो पुश्तैनी पगड़ी अभिमन्यु की पगड़ी उतार कर उसे पहना दी और फिर मुस्कुरा कर वहाँ से जाने लगी। लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और वो सिंहासन पर साइड में होकर बैठ गया जिससे कि थोड़ी सी जगह हो गई और उसने इप्सिता को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। इप्सिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उसने कहा, लेकिन हम कैसे? अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, कैसे क्या इप्सिता, ये जगह आपकी ही है और हम चाहते हैं अपने राजा के साथ लोग अपनी रानी से भी आज ही मिले और हमें नहीं लगता इससे अच्छा कोई मिलेगा आपको इंट्रोड्यूस करवाने का। इप्सिता को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि आज तक कभी किसी ने भी उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी जितनी कि आप अभिमन्यु उसे दे रहा था। उसे पता था कि अभिमन्यु के लिए वो इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल है ये उसे आज ही पता चल रहा था, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो काफ़ी इमोशनल फील कर रही थी लेकिन खुश भी थी। अभिमन्यु की बात सुनकर वहाँ पर खड़ी उसकी माँ, अर्पिता, चाचा, चाची और बाकी सारे लोग एकदम हैरान रह गए क्योंकि ऐसी कोई भी परंपरा नहीं थी और अभिमन्यु खुद से ये बात बोल रहा था। लेकिन अब वो राजा बन चुका था इसीलिए कोई भी उसके कहे पर सवाल नहीं उठा सकता था, वो अब कोई भी नियम कायदे चेंज कर सकता था और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। बाकी सारे लोगों के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर इप्सिता अभी भी काफ़ी नर्वस हो रही थी और अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इप्सिता की मम्मी पापा और नंदिनी उदय के चेहरे पर काफ़ी खुशी नजर आ रही थी और अर्पिता भी उन दोनों के लिए खुश थी। समर्थ भी वहां पर मौजूद था और वो भी काफी खुश लग रहा था, उसने ही ये सारी तैयारी करवाई थी इसीलिए उसे टाइम नहीं मिला था सुबह से अब तक अभिमन्यु से जाकर बात करने का, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो बहुत खुश था। अभिमन्यु अपनी जगह से उठा, उसने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या सोच रही हैं आप, आइए ना बैठिए यहाँ पर हमारे पास। इतना बोलते हुए उसने इप्सिता को राजगद्दी के एक साइड पर बिठाया और दूसरी साइड पर खुद बैठ गया उसके एकदम बगल में और फिर उसने तेज आवाज में चिल्लाकर अनाउंस करते हुए कहा, आप सब मिलिए अपनी रानी से, मिसेज इप्सिता अभिमन्यु राजवंशी। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात अनाउंस की वहाँ पर तालियां की गड़गड़ाहट से वो पूरी जगह एकदम ही गूंज गई और अभिमन्यु के राजा बनने के बाद से ही सारे लोग बहुत खुश होकर तालियां बजा रहे थे और अभी उन दोनों को साथ में देखकर वो सारे लोग और भी खुश हो गए थे।
अभिमन्यु ने पूरी रस्मों के साथ अपना राज्याभिषेक पूरा किया और अनाउंसमेंट हुई कि आज से इस राजवंशी खानदान को उसका नया राजा मिला है और वो राजा कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु राजवंशी है। और उसी के साथ इस बात की भी अनाउंसमेंट हुआ कि इप्सिता महल की नई रानी बनेगी और उसकी मासा अब से राजमाता कहलाएंगी। इसी के साथ कंपनी और सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारे पेपर थे जिन पर अभिमन्यु ने अपने साइन किए क्योंकि ऑफिशियली आज से सब कुछ उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया था जो कुछ अब तक उसके पापा के नाम पर था। इप्सिता वहीं अभिमन्यु के बगल में ही खड़ी थी, मासा ने वहीं सबके सामने आकर अभिमन्यु का राजतिलक किया था और मासा ने अभिमन्यु से उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपना फर्ज निभा रही थी। उनके चेहरे पर नाराजगी अभी भी साफ नजर आ रही थी। अभिमन्यु जानता था कि मासा इस टाइम से नाराज क्यों थी लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। टू बी कंटिन्यूड।